पता नहीं रात के किस पहर कशिश की आंख लगी। सुबह 6 बजे अलार्म बजने पर उसने कसमसाते हुए करवट बदली। अलार्म फिर बजा तो मजबूरन उसे अपनी नींद त्यागनी पड़ी। आंखें मलते हुए उसने फोन उठाकर समय देखा, फिर उठकर बैठ गई। मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रात को देर से सोने के कारण नींद पूरी नहीं हुई थी, पर मजबूरी थी, उठना तो था ही। नींद से भरी आंखें खोलते हुए उसने निगाहें उस दिशा में घुमाई जहां रात में ईशान सोया था, पर वहां ना तो ईशान का बिस्तर था और ना ही वो खुद। ईशान को वहां से गायब देखकर कशिश चौंक गई। उसकी सारी नींद एक झटके में गायब हो गई। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके पूरे कमरे में सरसरी निगाहें दौड़ाई, फिर झट से पलंग से नीचे उतरकर बालकनी की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो ईशान वहां भी नहीं था। कशिश वापस अंदर दौड़ी और बाथरूम देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था। ईशान कहीं नहीं दिखा तो वो मायूसी से पलंग पर बैठ गई और बालों को खुजाते हुए बोली, ये इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? कशिश ये सोच ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो व्याकुलता से यहाँ वहाँ निगाहें घुमाते हुए अपना फोन ढूंढने लगी। उसकी तलाश ड्रेसिंग टेबल पर जाकर खत्म हुई। उसने झट से अपना फोन लिया और फौरन ईशान को फोन लगा दिया। जैसे जैसे रिंग्स जा रही थी, कशिश की धड़कनों की लय भी बढ़ती जा रही थी। कुछ रिंग्स के बाद ईशान ने फोन उठाया। हेलो, हेलो, कहाँ है आप? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए आप? कशिश परेशान सी एक सांस में सब बोल गई और फिर ईशान के जवाब का इंतजार करने लगी। ईशान घाट की सीढ़ियों पर बैठा कलकल बहती गंगा की धाराओं को देख रहा था। कुछ देर पहले ही वो यहाँ आया था। सारी रात उसकी बेचैनी से करवटें बदलते हुए काटी थी। एक पल के लिए भी उसकी आंखों में नींद नहीं आ सकी थी। सारी रात कशिश के जाने की बात उसके मन को व्याकुल किए हुए थी और अपने मन की बेचैनी दूर करने के लिए वो यहाँ आ गया था। कशिश का सवाल सुनकर ईशान ने दूर दूर तक फैली गंगा मैया को निहारते हुए जवाब दिया, दुकान पर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद दिवाली है तो काम ज्यादा है। इतनी सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत थी? और अगर जाना ही था तो मुझे कम से कम बताकर तो जाते। आप तो मेरे उठने से पहले ही बिना बताए गायब हो गए और यहाँ मैं पागलों जैसे हर जगह आपको ढूंढती फिर रही हूँ। क्या काम इतना जरूरी था कि आपसे कुछ देर इंतजार तक नहीं किया गया? आप नहीं जानते कि सुबह सुबह खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपको बस आपका काम दिखता है, मेरी जरा भी परवाह नहीं आपको। यहाँ मैं आपके लिए इतना परेशान हो रही हूँ और आप अपना काम कर रहे हैं। जाइए, आप अपना काम कीजिए, अब मैं आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कशिश को ईशान का यूं बिना बताए जाना इतना बुरा लगा कि वो नाराजगी से एक सांस में सब बोलती ही चली गई। उसने ईशान को डांटा, अपनी नाराजगी जाहिर की, अपना दुख भी दिखाया और ईशान को कुछ कहने का मौका ना देते हुए अपनी बात कहकर अपनी नाराजगी दिखाते हुए उसने फोन काट दिया। ईशान बस उसकी बात सुनता रहा और फोन कटने के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से ही बोला, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो तुम? मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? मेरे बिना बताए चले जाने पर इतना नाराज क्यों हो रही हो तुम? और क्यों तुम्हारी कल की बातें सुनकर, तुम्हारे जाने का सोचकर मैं इतना परेशान हो गया हूँ? क्यों कल रात से मैं एक पल को भी सुकून ना पा सका? क्यों इतना बेचैन हो रहा हूँ मैं? जो मुझे अब महसूस हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। बहुत से सवाल है मेरे मन पर, जवाब किसी का नहीं। उसको सुलझाने और अपने सवालों का जवाब लेने यहाँ आया था मैं, पर यहाँ आकर भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे और उल्टा मेरी उलझने सुलझने के बजाय और बढ़ चुकी हैं। ईशान कुछ पल वहाँ बैठा यूं ही खामोशी से गंगा मैया की चढ़ती उतरती लहरों को देखता रहा। धीरे धीरे वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे। गंगा आरती में शामिल होने के बाद ईशान का मन कुछ शांत हुआ और वो गंगा मैया को नमन करते हुए दुकान के लिए निकल गया। दूसरी तरफ कशिश ईशान से बहुत नाराज थी। ईशान पर झल्लाने के बाद खुद में भुनभुनाते हुए वो तैयार होकर नीचे आई तो सरिता भाभी पहले से वहां मौजूद थीं। भाभी, आप ये सब क्यों करने लगी? मैं आ ही रही थी, कशिश ने सरिता भाभी को वहां देखकर कहा। आ जाने में उसे थोड़ी देर हो गई थी, जिसके कारण सरिता भाभी को काम करना पड़ा। ये देखकर कशिश थोड़ा शर्मिंदा हो गई थी कि कल ही तो वो आई है यहाँ और आज काम भी करना पड़ रहा है। कशिश की बात सुनकर सरिता ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ कशिश, ये जिम्मेदारियां तुम्हारे अकेले की तो नहीं। जब मैं नहीं थी तब तो सब तुमने ही संभाला होगा, पर अब मैं आ गई हूँ। इस घर और घर के लोगों के प्रति मेरे भी तो कुछ फर्ज हैं। अगर मैंने कुछ काम कर लिया तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ रहती नहीं पर मेहमान नहीं हूँ, तो घर के काम में हाथ बटा सकती हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो। आओ, हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, इसी बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएंगी, एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी मिल जाएगा। सरिता का जवाब सुनकर और उनका सहज सौम्य व्यवहार देखकर कशिश ने मुस्कुराकर हामी भर दी। इसके बाद दोनों बातें करते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद रजनी महिमा जी किसी काम से इस तरफ आईं तो घर की दोनों बहुओं को यूं एक दूसरे के साथ खुलते मिलते, हंसी मजाक करते और मिल बांटकर काम करते देख मुस्कुरा दी। शुभ्रा और शुभिका की छुट्टी शुरू हो चुकी थी तो दोनों घर की सफाई में लगी थी। अब दिवाली थी तो पूरा घर साफ होना था। कुछ देर बाद घर के पुरुष खाना खाकर काम पर निकल गए और स्त्रियां सफाई में लग गईं। कशिश यहाँ काम कर रही थी और ध्यान ईशान में अटका हुआ था। उसकी चिंता कशिश को बेचैन किए हुए थी। काफी लोग थे तो दोपहर तक काफी हद तक सफाई हो गई थी। बस एक कशिश ईशान का तो दूसरा धीरज जी का कमरा ही साफ करना रह गया था। सबने नहा धोकर सुबह का नाश्ता दोपहर में खाया। इतने में पुरुष लंच के लिए घर आ गए, पर इस बार रजनी खाना बनाने गई। पुरुषों को खाना खिलाने के बाद कशिश किचन में चली आई और टिफिन पैक करने लगी। ये देखकर रजनी ने हैरानगी से सवाल किया, कशिश ये टिफिन किसके लिए पैक कर रही हो? उनका सवाल सुनकर कशिश ने पलटकर उन्हें देखा और परेशान सी बोली, मिश्रा जी के लिए दीदी, सुबह बिना नाश्ते के ही निकल गए, काम के चक्कर में उन्हें खाना भी भेज नहीं पाई, बाहर का जल्दी से कुछ खाते भी नहीं है, पता नहीं अब तक कुछ खाया भी होगा या नहीं, जाकर खिलाती हूँ खाना और साथ में खबर भी लूंगी उनकी, काम ज्यादा जरूरी है या सेहत, बताओ ऐसी कोई खाली पेट काम पर जाता है भला? कशिश बेचैनी से एक सांस में बोलती ही चली गई, फिर बुरा सा मुंह बना लिया। रजनी ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर उसे गौर से देखते हुए बोली, तुमने पहले से जाने की योजना बनाई हुई थी, इसीलिए सबके कहने पर भी तुमने कुछ नहीं खाया। रजनी के सवाल पर कशिश ने सहमति में सिर हिला दिया, हाँ आपके भाई ना बहुत जिद्दी हैं, ऐसे तो नखरे दिखाएंगे, पर अगर कहूंगी कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है और जब तक वो नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी, तो बिना बहस किए चुपचाप खा लेंगे खाना। कशिश ने गहन रहस्य पर से पर्दा उठाया और उसकी बात सुनकर रजनी मुस्कुरा दी। कशिश को ईशान की चिंता है और ईशान कशिश की परवाह करता है, ये देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। उन्हें विश्वास हो गया था कि उसके जाने के बाद दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। कशिश अपनी बात पूरी करके वापस लंच पैक करने लगी। कुछ देर बाद रजनी उसे ईशान की दुकान छोड़ने चली गई। दिवाली थी तो सच में दुकान में काफी काम था। दोनों लड़के मिठाई बना रहे थे, मतलब बेसन के लड्डू बना रहे थे। दुकान में जहां नजर जाती हर जगह बड़े बड़े बर्तनों में अलग अलग तरह की मिठाई रखी थी और अभी से ही उनकी बिक्री भी शुरू हो चुकी थी। दोपहर का वक्त था इसलिए अभी ग्राहक ज्यादा नहीं थे। ईशान मिठाई सही जगह सेट कर रहा था तभी अचानक उसके कानों में कशिश की मीठी सी खनकती आवाज पड़ी,
मिश्रा जी। ईशान उसकी आवाज सुनकर इतना हैरान हुआ कि चौंकने की वजह से उसके हाथ में पकड़ी लड्डू की बड़ी सी थाली गिरने को हो गई। ये देखकर रघु रामू दोनों की आंखों की पुतलियां फैल गई और कशिश तो घबराकर चीख उठी, संभलकर मिश्रा जी, सारे लड्डू बर्बाद हो जाएंगे। वहां मौजूद तीनों ही लोग लड्डू गिरने को लेकर परेशान और घबराए हुए थे, पर ईशान ने किसी तरह अपना बैलेंस बना लिया। उसने लड्डू की थाली दूसरी तरफ रखने के बाद गहरी सांस छोड़ी और लड्डू को सही सलामत और सुरक्षित देखकर बाकी तीनों की भी जान में जान आई। लड्डू को सही सलामत उनकी जगह पर रखने के बाद ईशान कशिश की तरफ मुड़ा और हैरानगी से सवाल किया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ईशान का सवाल सुनकर कशिश ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़े का थैला हवा में लहराया और चंचलता भरी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, टन टना टन टन, सरप्राइज, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। कशिश रहस्यमयी मुस्कान लबों पर सजाते हुए शरारत से आंखें मटकाते हुए ईशान को देखने लगी। ईशान ने उड़ती नज़र थैले पर डाली, फिर सवालिया निगाहों से कशिश को देखने लगा, क्या है इसमें? कशिश को ईशान का ये सवाल पूछना ज़रा पसंद नहीं आया। उसकी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उसने ईशान को घूरते हुए देखा, फिर नाराज़गी से मुँह फुला लिया, आपका लंच और क्या होगा? आप तो सुबह मुझे सोता छोड़कर यहाँ भाग आए, खाना भी नहीं खाया आपने। मैं तो सुबह ही आती यहाँ आपकी खबर लेने, पर वो तो मैं काम में लग गई तो मौका नहीं मिला आने का। पर आपको मालूम है आपके सुबह सुबह मिस्टर इंडिया बनने और भूखे पेट काम पर आने की वजह से मैं कितनी परेशान हो गई थी। सुबह से किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था, नाराज थी आपसे, फिर भी कितनी चिंता हो रही थी मुझे आपकी। आप क्या ठीक है या नहीं, आपने कुछ खाया होगा या नहीं, यही सब सोच रही थी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उड़कर आपके पास चली आती, पर घर में दिवाली की सफाई हो रही थी जिसके कारण चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकी। पर जैसे ही मैं फ्री हुई मैं सीधे आपके पास चली आई। आपको मालूम है इतनी भूख लग रही है मुझे, इसलिए अब आप मुझे यहाँ बिना बताए आने के लिए डांटने मत लगिएगा और बिना नखरे दिखाए चुपचाप मेरे साथ लंच कर लीजिएगा, वरना अगर आपके कारण भूख से मेरी जान गई तो भूत नहीं चुड़ैल बनकर आपसे चिपट जाऊंगी। कशिश की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, मीठी सी नाराजगी और बच्चों जैसी धमकी सुनकर ईशान चाहकर भी कुछ कह ना सका। कशिश उसके लिए परेशान थी ये जानकर जाने क्यों, पर उसके मन को सुकून सा मिल रहा था। पर कशिश उसके कारण सुबह से भूखी है जबकि भूख उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ये जानकर वो हैरान भी था और कुछ परेशान भी हो गया था। एक बार फिर बहुत से सवालों का तूफान मन में उठ रहा था जिससे मन व्याकुल था, साथ ही कशिश की बेवकूफियाना हरकत पर उसे उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर कशिश को चाहकर भी डांट ना सका। अब उसने गौर से अपने सामने खड़ी इस मासूम सी प्यारी सी लड़की को देखा जो दुनिया के सामने उसकी दिखारी की पत्नी थी, फिर भी असली पत्नियों के जैसे उसका ख्याल रखती थी, उसकी परवाह करती थी, उससे उसके लिए ही नाराज होती थी, उसे खुश रखने की कोशिश करती थी, उसके गमों की साथी बनकर उसके हर दर्द हर तकलीफ को बांटती थी, हक से उस पर हक जताती थी, बीवियों जैसे हुक्म सुनाती थी, जब जब वो कमजोर पड़ता उसे संभालती थी और आज भी उसके लिए अब तक भूखी थी और उससे नाराज होते हुए उसके लिए खाना बनाकर खुद लेकर आई थी। ईशान की निगाहें भले ही कशिश पर ठहरी थी पर ध्यान तो इन ख्यालों में उलझा था।
जबकि ईशान की निगाहों को खुद पर टिका देखकर कशिश ने उसे घूरा और मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अब आंखें फाड़े मुझे घूर क्या रहे हैं, सामने से हटिए, मुझे अंदर जाना है, आगे।